आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। रेलवे के विकास के लिए बजट में प्रदेश को 19,848 करोड़ रुपए किए गए आवंटित। अब अपनी तैनाती तहसील में ही निवास करेंगे एसडीएम और तहसीलदार, मुख्य सचिव मनोज कुमार ने जारी किया आदेश। सर्वोच्च न्यायालय में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित होगी विशेष लोक अदालत। और बीएसएफ, सीआईएसएफ और आरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को शामिल करने की तैयारियां पूरी। सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण और आयु में मिलेगी छूट। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय रेल और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए कुल 92,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। श्री वैष्णव ने कल वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 2004 से 2014 तक यूपीए के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए 1,109 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, जिसे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में बढ़ाकर 19,848 करोड़ रुपए कर दिया गया है, जो पिछली सरकार की तुलना में 18 गुना ज्यादा है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश में रेलवे के विकास के लिए 19,848 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। जिस तेजी से पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में रेलवे का काम हुआ है, उसका आप किसी भी पैमाने पे देखें तो वो एक नया रिकॉर्ड है।
श्री वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में 4,900 किलोमीटर रेलवे ट्रैक बनाए गए हैं, जो पूरे स्विट्जरलैंड के रेलवे ट्रैक की लंबाई से अधिक हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी रेलवे ट्रैक का 100% विद्युतीकरण हो चुका है। साथ ही प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में 1,490 फ्लाईओवर और अंडरपास का निर्माण हुआ है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जीवन सुगम हुआ है और दुर्घटनाओं की संख्या कम हुई है। केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत न हो, इसके लिए 40 से अधिक प्रोजेक्ट्स को चिन्हित किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज के रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास कई चरणों में होगा। श्री वैष्णव ने कहा कि कुंभ की तैयारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं कर रहे हैं, कहीं कोई कमी न रहे इसके लिए जनप्रतिनिधियों से फीडबैक भी लिया जा रहा है। बड़ी संख्या में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। उधर पूर्वोत्तर रेलवे की महाप्रबंधक सौम्या माथुर ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बजट का अधिकांश हिस्सा रेलवे के आधारभूत ढांचे के विकास पर खर्च होगा। उन्होंने बताया कि ट्रेनों की आमने सामने टक्कर रोकने वाली प्रणाली कवच को मंजूरी मिल चुकी है, इसे इंस्टॉल करने की प्रक्रिया जल्दी शुरू की जाएगी। इसके लिए पहले ऑप्टिकल फाइबर बिछाकर नेटवर्क को कनेक्ट करना जरूरी है, जिस पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर रेलवे में विद्युतीकरण का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। मीटर गेज लाइनों को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया गया है। तीसरी लाइन के निर्माण और दोहरीकरण के कार्य में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास का कार्य भी तेजी से कराया जा रहा है। राज्यसभा में कल शून्यकाल के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आम बजट में कुछ राज्यों के साथ भेदभाव बरतने के आरोप को खारिज किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्ष लगातार यह धारणा बनाने का प्रयास कर रहा है कि विपक्षी दलों वाले राज्यों को बजट में कुछ नहीं दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी बजट में हर राज्य का नाम नहीं लिया जा सकता। कल सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाते हुए आरोप लगाया कि केंद्रीय बजट सरकार को बचाने का प्रयास था। उधर लोकसभा में भी इसी मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर आपत्ति दर्ज की और कहा कि सदन को शून्यकाल के दौरान योजनाबद्ध तरीके से बाधित करना सही नहीं है। संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों के नेताओं ने सदन की सुचारू कार्यवाही चलाने पर सहमति व्यक्त की थी। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल के दौरान विरोध प्रदर्शन उपयुक्त नहीं है। जनता की समस्याओं को सुनने और समय पर उनकी समस्याओं का निस्तारण सुनिश्चित कराने के लिए अब सभी एसडीएम और तहसीलदारों को अपनी तहसील में ही निवास करना होगा। इस संबंध में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की ओर से सभी मंडलायुक्तों और जिला अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव ने कहा कि सरकार की गुड गवर्नेंस की प्रतिबद्धता के लिए यह आवश्यक है कि तहसील स्तरीय प्रशासन पूरी सजगता और तत्परता से कार्य करे। साथ ही सभी जिलाधिकारी ईमेल आईडी पर 7 दिन के अंदर इस आशय का सर्टिफिकेट उपलब्ध कराएं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल एआईआर न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। लंबित मामलों को निपटाने और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय 29 जुलाई से 3 अगस्त 2024 तक विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने उन नागरिकों से इस पहल का लाभ उठाने की अपील की है जिनके मामले शीर्ष अदालत में लंबित हैं।
इस साल 29 जुलाई से 3 अगस्त तक भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने लोक अदालत का आयोजन किया है। इस साल सर्वोच्च न्यायालय अपने 75वें वर्ष की वर्षगांठ पर इस स्पेशल लोक अदालत का आयोजन करते हुए ये ध्यान में हमने रखा है कि सुप्रीम कोर्ट में काफी मामले नागरिकों के लंबित हैं और मैं आप सब से गुजारिश करता हूं, लिटिगेंट से गुजारिश करता हूं, वकीलों से, एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड से कि इस लोक अदालत में आप हिस्सा लें ताकि ये सारे जो मामले हैं इनमें जहां हम कर सकें इनका हम निवारण कर लें और शीघ्र लोगों को न्याय पहुंचाएं।
उधर सर्वोच्च न्यायालय ने अदालत की कार्य अवधि से संबंधित अपने नियमों में संशोधन किया है। संशोधन के अनुसार नई कार्य अवधि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। शीर्ष न्यायालय ने अपनी अधिसूचना में कहा है कि छुट्टियों और दूसरे तथा चौथे शनिवार को अदालत के कार्यालय बंद रहेंगे। नए नियम 1 अगस्त से लागू होंगे। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ जैसे केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों ने पूर्व अग्निवीरों को अपने अपने संगठन में शामिल करने की तैयारियां कर ली हैं। बीएसएफ के महानिदेशक नितिन अग्रवाल ने कहा है कि पूर्व अग्निवीरों को सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण और आयु में छूट मिलेगी। सीआईएसएफ के महानिदेशक नीना सिंह ने भी कहा कि पूर्व अग्निवीरों को कांस्टेबल के पदों पर 10% आरक्षण, आयु और शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट मिलेगी। आरपीएफ के महानिदेशक मनोज यादव ने कहा कि रेलवे सुरक्षा बल आयु सीमा में छूट और शारीरिक दक्षता परीक्षा से छूट के साथ पूर्व अग्निवीरों को बल में शामिल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर्वोच्च न्यायालय के नीट यूजी परीक्षा 2024 दोबारा न कराने के आदेश के बाद देशभर में सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए कल से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट मुद्दे पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है और इसे सत्य की जीत बताया है। शीर्ष न्यायालय के फैसले पर मीडिया को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि नीट घोटाले में शामिल दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा एजेंसी को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है। श्री प्रधान ने कहा कि समिति ने विशेषज्ञों की राय एकत्र की है और विभिन्न मॉडलों का अध्ययन किया है। शिक्षा मंत्री ने इस मुद्दे पर कांग्रेस के रवैये की निंदा की है। प्रयागराज महाकुंभ मेले की तैयारी बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि आगामी महाकुंभ 2025 क्लीन और ग्रीन होना चाहिए। मेला क्षेत्र में स्थापित शौचालय साफ होने चाहिए, उनकी सफाई की निगरानी थर्ड पार्टी को दी जाए, यह सुनिश्चित किया जाए कि दूषित जल गंगा में प्रवाहित न होने पाए। उन्होंने कहा कि शहर के परिदृश्य को नया रूप देने के लिए भित्तिचित्र, साइनेज और जगह जगह स्ट्रीट लाइटें लगाने के साथ ही जंक्शन को भी सजाया जाए। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा पर 23 जुलाई को हुई मुठभेड़ में शहीद जवान सुभाष चंद्र का पार्थिव शरीर आज उनके हाथरस स्थित सादाबाद तहसील के नागलमनी गांव लाया जाएगा। पूरे सैन्य सम्मान के साथ गांव में ही शहीद का अंतिम संस्कार होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेलवे के विकास के लिए बजट में प्रदेश को 19,848 करोड़ रूपये किए गए आवंटित। अब अपनी तैनाती तहसील में ही निवास करेंगे एसडीएम और तहसीलदार, मुख्य सचिव मनोज कुमार ने जारी किया आदेश। सर्वोच्च न्यायालय में 29 जुलाई से 3 अगस्त तक आयोजित होगी विशेष लोक अदालत। और बीएसएफ, सीआईएसएफ और आरपीएफ में पूर्व अग्निवीरों को शामिल करने की तैयारियां पूरी। सीमा सुरक्षा बल में भर्ती के लिए 10% आरक्षण और आयु में मिलेगी छूट। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।